ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुशीला कार्के ने प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के साथ प्रतिनिधि सभा चुनाव संबंध में किया विचार विमर्श। चुनाव के लिए सुरक्षा का वातावरण बनाने का नेताओं ने किया आग्रह। आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 1,89,00,000 मतदाता हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। प्रतिनिधि सभा चुनाव में समानुपातिक प्रणाली के उम्मीदवारों की बंद सूची पूछ 14 गते तक पेश करने का निर्वाचन आयोग ने दलों से किया है आग्रह। और रूस यूक्रेन युद्ध का अंत करने के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कल फ्लोरिडा में होगी वार्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं के साथ आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव संबंध में विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री कार्की ने नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के साथ आगामी चुनाव के संबंध में विचार विमर्श किया। भेंट में तीन दलों के शीर्ष नेताओं ने सुरक्षा की स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि सुरक्षा की प्रत्याभूति देने के हिसाब से सरकार को काम करना होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्के ने यह भी कहा था कि चुनाव के लिए हर जरूरत पूरी करने के लिए सरकार तैयार है। ये बात सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने बताई। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 के लिए घोषित प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए आज अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशित की है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 9,15,119 नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। बता दें कि आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 1,78,88,570 थी और इस बार वो बढ़कर 1,89,03,689 हो गई है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराय ने दी। गौरतलब है कि आगामी फागुन 20 गते तक में 18 की उम्र पूरा करने वाले नागरिकों के विवरण को अद्यतन करके अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशित की गई है। प्रवक्ता भट्टाराय ने बताया कि आसन्न चुनाव के लिए देशभर 10,967 मतदान स्थलों में 23,112 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची निर्वाचन अधिकृत कार्यालय में पेश करने का आग्रह किया है। आयोग ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूछ 13 से 14 गते तक शाम 4 बजे तक विधि और प्रमाण कागजात की प्रक्रिया पूरी कर उम्मीदवारों की बंद सूची पेश करने का अनुरोध किया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराय ने दी। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक में प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से समानुपातिक वाले 110 उम्मीदवारों को चुनने का मापदंड तैयार कर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हुई। आज पार्टी मुख्यालय सानेपा में हुई बैठक में पार्टी के महाधिवेशन की कार्यतालिका परिमार्जन जैसे विषयों में भी बातचीत हुई थी। बैठक ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए पिछले चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार या पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार के विरुद्ध उम्मीदवारी देने वाले व्यक्तियों और उनके प्रस्तावकों और समर्थकों पर की गई कार्रवाई की बाकी अवधि या अंश माफ करने का निर्णय किया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक कल के लिए बुलाई गई है। आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारी संबंध में विचार विमर्श के लिए कल रविवार सुबह 11 बजे एमाले सचिवालय की बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी एमाले सचिव डॉ राजन भट्टाराय ने दी। उन्होंने बताया कि 11वें महाधिवेशन के बाद पहली बार होने जा रही बैठक में प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए समानुपातिक उम्मीदवारों के बारे में विचार विमर्श होगा। बता दें कि बैठक एमाले पार्टी मुख्यालय चासल में बुलाई गई है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अरियाल ने कहा कि सरकार ने नागरिकों में आशा जगाने का काम किया है। गृह मंत्रालय संभालने के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए गृहमंत्री अरियाल ने यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि बीते भाद्र 23 और 24 गते के जिनजेट आंदोलन में व्यक्त भावना की कद्र करते हुए सरकार फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री अरियाल ने कहा कि जिनजेट पीढ़ी द्वारा मांगे गए सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली और भ्रष्टाचार अनुसंधान जैसे मामलों में सरकार ने नागरिकों में आशा जगाने वाले काम किए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विभिन्न मंत्रालय संभाल रहे ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग एवं उज्यालो नेपाल पार्टी के संरक्षक भी रहे मंत्री घिसिंग ने कहा कि देश अब नई सोच, नए नेतृत्व और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगा। आज उज्यालो नेपाल पार्टी नुवाकोट काठमांडू संपर्क मंच द्वारा काठमांडू के बौद्ध में आयोजित उद्घाटन समारोह में मंत्री घिसिंग ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में राजनीतिक परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है, उन्होंने कहा कि आगामी फागुन 21 के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव को देश का भविष्य बदलने वाले महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लेने का उन्होंने आग्रह भी किया। रोहतक जिले की कटहरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित ज्योति डिस्टिलरी का बॉयलर विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 6 लोग घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतक के अनुसार आज सुबह हुए बॉयलर विस्फोट में वहीं के 45 वर्षीय लक्ष्मण यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए वीरगंज भेजा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वो रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिका के मध्यस्थता वाले पीस प्लान और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने कहा है कि ये प्लान उस प्लान से पूरी तरह अलग था जिस पर रूस अमेरिका से बातचीत कर रहा था। रूस ने जेलेंस्की के उस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रूस अपनी सेना को पीछे लेता है तो यूक्रेन भी पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना को पीछे हटा लेगा। बीते कुछ दिनों से चल रहे संघर्ष के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर से युद्धविराम समझौता हो गया है। हालिया संघर्ष के दौरान कम से कम 5 लोग मारे गए थे। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी तोड़ दी गई थी जिस पर भारत ने चिंता जताई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों ने सीज फायर पर हस्ताक्षर किया है और कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते की घोषणा की है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जुलाई महीने में युद्धविराम पर सहमति के बाद से दोनों देशों के बीच हाल में फिर से टकराव बढ़ गया था। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया था। इस साल मई से अब तक दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों में आपसी व्यापार बंद है, साथ ही यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सोमवार को थाई सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने थाईलैंड के उबोन राचाथानी प्रांत में कंबोडियाई गोलीबारी का जवाब दिया है। इसमें विवादित सीमा पर हवाई हमले भी शामिल थे। उधर कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कंबोडिया के प्रेह विहियर प्रांत में पहला हमला थाई सेना ने किया है। दोनों पक्षों के अधिकारियों के अनुसार सोमवार की लड़ाई के बाद कम से कम 1 थाई सैनिक और 4 कंबोडियाई नागरिक मारे गए हैं। झड़पों में लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रमुख 3 दलों के शीर्ष नेताओं के साथ प्रतिनिधि सभा चुनाव संबंध में किया विचार विमर्श। चुनाव के लिए सुरक्षा का वातावरण बनाने का नेताओं ने किया आग्रह। आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 1 करोड़ 89 लाख मतदाता हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। प्रतिनिधि सभा चुनाव में समानुपातिक प्रणाली के उम्मीदवारों की बंद सूची पूछ 14 गति तक पेश करने का निर्वाचन आयोग ने दलों से किया है आग्रह। और रूस यूक्रेन युद्ध का अंत करने के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कल फ्लोरिडा में होगी वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।